आसीनो दूरं व्रजति शयानो याति सर्वतः कस्तं मदा मदं देवं मदन्यो ज्ञातुमर्हति। वह आत्मतत्व स्थिर होता हुआ भी दूर तक चला जाता है, शयन करता हुआ भी सभी जगह पहुंच जाता है। वह सुख दुख से परे मेरे बिना और कौन जान सकता है। आचार्य यम अवैस 21वें श्लोक में उस आत्मतत्व की जो व्यापकता की अनुभूति है और उसकी विरुद्ध धर्माश्रयता, इसका प्रतिपादन कर रहे हैं। ब्रह्म तत्व में आत्म तत्व में विरुद्ध धर्माश्रयता है, माने अनेक विरुद्ध धर्म भी उसके अंदर निवास करते हैं। वो व्यापक तत्व हैं, तो सभी चीजें उन्हीं में रहेगी, ठंडी भी वहीं और गर्मी भी वहीं। वो जगत का आधार है, विश्व का अधिष्ठान है, इसलिए सारी चीजें उन्हीं में रहेगी। विरुद्ध धर्माश्रय माने धर्म का भी आधार वही है और अधर्म का आधार भी वही है। सारी चीजें उन्हीं में हैं और उसके बाद भी उनसे वो परे हैं। आचार्य यम को ये कहना है कि सारी चीजें रहती उन्हीं में हैं और उन सभी चीजों से वो परे भी हैं। यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता, आत्म तत्व की सबसे बड़ी विशेषता, संपूर्ण विरुद्ध धर्म भी वहीं रहते हैं और वो उन धर्मों से भी परे हैं। दुनिया के सारे रूप वहीं रहते हैं और वो रूप से परे भी हैं। अरूपम, अशब्दम, अस्पर्शम, नाम रूपात् विमुक्तः, वो शब्द से परे हैं, रूप से परे हैं, स्पर्श से परे, गंध से परे, रस से परे हैं और सारे रूपादि कहां रहते हैं? उन्हीं में रहते हैं, दिखाई तो उन्हीं में देते हैं, क्योंकि और तो कोई दूसरा आधार अधिष्ठान तो है नहीं, लेकिन उससे परे हैं। वो जगत दिखाता है और फिर भी जगत से परे। इसी कवि ने एक बहुत अच्छी बात कही, है कहे तो नहीं, नहीं कहे तो है नहीं के बीच में जो कछु है सो है। उस परमात्मा को है कहे तो मालूम नहीं पड़ता है, वो दिखाई नहीं देता है, वो दृष्टि का विषय नहीं होता है, इसलिए लोग उसको नहीं कहते हैं। हम कितना भी उसको है बोले लेकिन वो दिखता तो है नहीं, है कहे तो नहीं। और उसको जब हम नहीं कहते हैं तो उसके बिना इस सृष्टि संभव ही नहीं है, हम उसको नहीं कह सकते। इसलिए कवि ने कहा कि भाई हम इतना ही कह सकते कि है और नहीं कि जो बीच में जो है ना, भले हुआ ही है वो। आप इसको सारी चीजें आप ले लेना, उसको रूप समझो या अरूप, या निर्गुण समझो या सगुण। एक जगह पर जनाबाई ने एक बहुत अच्छी बात बोली, वो कहती कि तुमको निर्गुण कहूं कि सगुण, तुमको मैं निर्गुण कहूं कि सगुण कहूं। और उन्होंने अंत में बता दिया, बोले सगुण और निर्गुण ये दोनों कोई अलग थोड़ी है। तुम्हें सगुण कहती हो तो तुम निर्गुण मालूम पड़ते हो, और तुमको निर्गुण कहती हो तो सगुण मालूम पड़ते हो। तुमको रूप कहूं कि अरूप, इसलिए बोला उन्होंने दोनों तुम सगुण भी और निर्गुण भी, रूप भी अरूप भी, शब्द भी अशब्द भी। आचार्य हम उस तत्व के बारे में रहस्यपूर्ण बात बोल रहे हैं, रहस्यपूर्ण। आचार्य यम ये रहस्य है, रहस्य अनिर्वचनीयता। इस जगत को हमारे शास्त्रों ने अनिर्वचनीय बोला है, अनिर्वचनीय। और ब्रह्म तत्व को भी अनिर्वचनीय कहा है। और ये अनिर्वचनीय जो शब्द है ना, बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। ये वेदांत का टेक्निकल शब्द है। ये जगत जो है ना, बहुत अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीय माने इसके बारे में क्या कहे हम, ऐसा हम इसको सत कहे कि इसको असत कहे। इसलिए शास्त्र ने कहा सद असद विलक्षण है, तो उसके लिए कौन सा शब्द दे, तो बोले अनिर्वचनीय। इस संसार को सत कहे तो प्रतिक्षण ये बदल रहा है। सत माने सत्य, सत माने स्थायी, सत माने अविनाशी। इसको अविनाशी बोले तो इतना परिवर्तनशील है कि अश्वत्थ बोला भगवान ने, श्रुति ने भी बोला अश्वत्थ मूल, ऐसा बोला कि नहीं, ऊर्ध्व मूल अश्वत्थम प्राहु। और अश्वत्थ जो बोला है बहुत रहस्यपूर्ण ढंग से कहा है। अपने को तो ऐसा लगता है कि पीपल का पेड़ बोला, भाई पीपल का पेड़ अश्वत्थ, लेकिन इसमें तीन शब्द है अश्वत्थ, अश्वत्थ, ये तीन शब्द मिलकर बना अश्वत्थ। और इन तीनों शब्दों के अलग अर्थ हैं। अ माने होता है नकारात्मक, नहीं है। जहां पर भी संस्कृत में अ शब्द आता है, जहां नए तत्पुरुष समास के द्वारा वो न चला जाता है, अ बचा रहता है, तो यहां अ शब्द का अर्थ हुआ नहीं। श्व माने कल तक, श्व माने कल तक, और स्थ माने स्थिति, जिसकी कल तक भी स्थिति नहीं है, जिसकी कल तक भी उपस्थिति संभव नहीं है, जिसकी कल तक अस्तिता संभव नहीं है, उसको बोलते अश्वत्थ। तो संसार के बारे में हम निश्चित नहीं कह सकते हैं कि ये संसार कल तक रहेगा कि नहीं रहेगा। ये कितना परिवर्तनशील है, हम गारंटी के साथ निश्चित तौर पर ये नहीं कह सकते कि ये परिस्थिति कल तक रहेगी। कह सकते हैं? नहीं कह सकते। ये इतना परिवर्तनशील। एक महाभारत का बड़ा सुंदर उदाहरण है। एक बार संध्या के समय भोजन वगैरह कर विश्राम की ओर जा रहे थे राज परिवार के सभी सदस्यगण, पांचों पांडव आपस में बैठक में बातचीत करते रहे, योजनाएं बनाते रहे, आपस की प्रेम की बातें हुई। जब शयन करने के लिए जाने लगे युधिष्ठिर जी महाराज, उसी समय एक कोई ब्राह्मण आया और उन्होंने दान मांगा। लेकिन उस समय कोष के द्वार बंद हो चुके थे, कोषालय बंद था, वो तो पारिवारिक लोग बैठे थे, जो अधिकारी लोग तो चले गए थे। अब वो धन कहां से दे उन्हें, कई बार बड़े आदमी की जेब में भी कुछ नहीं रहता है, कई बार बड़े आदमी की जेब में भी कुछ नहीं मिलता है। कोई आके मांग ले और पर्स तो घर में रह गया, क्या करोगे आप, तो ड्राइवर से पैसे लेने पड़ते हैं, भैया तुम्हारे पास है क्या? तो उन्होंने ब्राह्मण को बोल दिया कि महाराज कल आना और आपको जितना चाहे उतना आप ले जाना। इतना बोल करके वो चले गए, अपने कक्ष में चले गए, अपने महल चले गए। वहां हस्तिनापुर में एक बहुत बड़ा ढोल रखा था, ढोल, और कोई अद्भुत घटना घटती, हर्ष की, आनंद की, उत्सव की या दुख की, तो अद्भुत समय में वो ढोल बजाया जाता था। अभी राजस्थान में भागवती कथा थी, वहां उदयपुर के पास एक देवगढ़ स्टेट है, देवगढ़। तो जैसे ही हम लोग वहां पहुंचे और गाड़ी से उतरने लगे, वो जो ढोल बज रहे थे वहां, और वो कुछ सनाई वगैरह बज रही थी, तो लोगों ने हमको सुनाया कि यहां कोई विशिष्ट अतिथि महल में प्रवेश करता है तो यहां पर ये आदमी ढोल बजाता है वो, और सनाई बजती है हमारे यहां, जो भी कोई विशिष्ट अतिथि आने लगता, वो राज परिवार की परंपरा। और वहां अद्भुत घटना के उपलक्ष्य में बजाया जाने वाला ढोल और भीम पहुंच गए और जो ढोल बजाने लगे, वहां एक आश्चर्य की बात, जो सत्य राजा युधिष्ठिर के मन में आना चाहिए था, अर्जुन के मन में आना चाहिए था, वो उनके मन में नहीं आया। और भीम की बुद्धिमान लोगों में गिनती नहीं, बलवान लोगों में गिनती है। आप कभी भी विचार करते हैं तो बुद्धिमान लोगों में भीम की गिनती नहीं है, वो तो केवल दो ही चीजें जानता है, खाना और वजन बढ़ाना, ताकत बढ़ाना। आप बुद्धिमान लोगों में उनको बिल्कुल नहीं गिनेंगे। आपको बुद्धिमान लोगों में गिनना हो तो अर्जुन है, सात्विकी हैं, उद्धव हैं, पांचों पांडवों में सहदेव को भी बहुत बुद्धिमान माना गया, और युधिष्ठिर जी महाराज तो धर्म का अवतार है ही, लेकिन वो चीज उनके भी दिमाग में नहीं आई, किसी के भी दिमाग में नहीं आई, लेकिन वो चीज भीम के दिमाग में आई। इसलिए कई बार सत्य प्रकट होता है बहुत सामान्य व्यक्ति में भी। इसलिए सत्य को स्वीकार करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, चाहे छोटे से आए चाहे बड़े से आए। भीम जाकर के ढोल बजाने लगे, बड़े जोर जोर से बजाने लगे। उनका तरीका था अपना, कहने का अपना तरीका था। आश्चर्य हुआ युधिष्ठिर जी महाराज जी को, उन्होंने सेवक को भेजा और पूछा कि भैया बात क्या है, ये ढोल क्यों बज रहा है, क्या आश्चर्य, कौन सी चीज आपत्ति आई या कौन सा आनंद हुआ हमें। सेवक ने जाके देखा अपना भीम दादा बजा रहे हैं। सेवक ने आके बताया कि भीम, राजकुमार भीम बजा रहे हैं। बाहर आ गए, बुलाया भीम को और बुला करके पूछा कि भैया तुम ढोल क्यों बजा रहे हो, बात क्या है, तुम कौन सी खुशी में ये ढोल बजा रहे हो। भीम ने कहा इससे ज्यादा खुशी क्या हो सकती है कि युधिष्ठिर जी महाराज जी को मालूम पड़ा कि वो कल तक जीवित रहेंगे, क्योंकि आपने ब्राह्मण को बोला है कि कल दान देंगे, इसका मतलब कि आपको भरोसा है कि कल तक आप जीवित रहेंगे, और आपको ये भी भरोसा है कि कल तक दान लेने वाला वो ब्राह्मण भी जीवित रहेगा, और आपको ये भी भरोसा है कि कल तक देने के लिए संपत्ति भी आपके पास रहेगी, और आपको मालूम है कि आपके हाथ से राज्य कितनी बार और कितने थोड़े समय से निकल गया हाथ, लेकिन आज हमें मालूम पड़ा, आपको मालूम पड़ा कि कल तक संपत्ति भी रहेगी, देने की मनोवृत्ति भी आपकी रहेगी, और उस ब्राह्मण की भी लेने की मनोवृत्ति रहेगी, दोनों जिंदा है, लेकिन मानो उस ब्राह्मण में लेने की मनोवृत्ति नहीं रही तो क्या करोगे आप, और हो सकता है कल आपका मन बदल जाए। कई बार ऐसा होता है कि नहीं, आदमी बोल देता है कि हां दे देंगे, और दूसरे दिन बोल देता है कि भैया हमारी हैसियत नहीं है। बोले इतनी सारी चीजें निश्चित हो गई, ये हमारे लिए बहुत बड़ी हर्ष की बात है। समझ गए युधिष्ठिर जी महाराज, समझ गए। उन्होंने कहा कि भीम, तुमने आज हमारी आंखें खोली। क्या भरोसा इस जीवन का, क्या भरोसा, न देने वाले का भरोसा और न लेने वाले का भरोसा। इतना ये क्षणिक है, ये दुनिया इतनी क्षणिक है। और उसी समय उस ब्राह्मण को बुला करके सम्राट युधिष्ठिर ने जो उनको चाहिए था वो प्रदान कर दिया। ये दुनिया की हर चीज, हर व्यक्ति, वस्तु, स्थान, अवस्था, परिस्थितियां बहुत परिवर्तनशील है। अश्वत्थ इसी को तो बोलते हैं, अश्वत्था। अ माने नहीं है, श्व माने कल तक, अस्था माने स्थिति, अस्तिता जिसकी, उसको बोलते हैं अश्वत्थ। भगवान ने कहा कि ये संसार जो है ना पीपल का पेड़ है, अश्वत्थ है। तो आप बड़े खुश हो गए जब भगवान ने कहा कि पीपल का वृक्ष है, तो आप बहुत खुश हो गए होंगे। एक महात्मा सुना रहे थे, एक मंत्री आए बोले हमारे पास, और उन्हें कहा कि महाराज मैं चुनाव जीत गया। उस महात्मा ने कहा वाह वाह, बहुत मीठा पपीता का पेड़ तुमने लगाया। वो खुश होकर चला गया। लेकिन उस महात्मा ने कहा कि भाई तुम पपीता का पेड़ लगाए, और पपीता का पेड़ रहता कितना दिन। उन्होंने ये नहीं बोला कि तुमने वड़ का पेड़ लगाया, पीपल का, वो तो चलता सैकड़ों वर्ष तक। पपीता का पेड़ वो साल भर दो साल चलता है, बाद में खत्म हो जाता है वो। ये संसार जो है ना परिवर्तनशील है। कल तक इसकी स्थिति रहेगी कि नहीं रहेगी, इसका हम कुछ भी निश्चित नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसको आप सत्य नहीं बोल सकते हैं। ये सत्य है ऐसा आप नहीं बोल सकते हैं। और ये सत्य नहीं तो हम असत बोल दें, इसको असत भी नहीं बोल सकते, क्योंकि ये बहुत हमारे ऊपर प्रभाव डालता है। ये दिखाई भी देता है, क्योंकि असत चीज दिखती नहीं है। जो असत वस्तु होती है ना वो दिखती नहीं। जैसे असत माने वंध्या का पुत्र, आदमी की सींग आपने देखा कभी, बाजार में मिले तो अच्छा है ले आओ, आदमी की सींग होते ही नहीं, आपको कहां से मिलेंगे। वंध्या का पुत्र भाई, वो पुत्र यदि हुआ तो वंध्या ही नहीं होगी ना, वो वंध्या और पुत्र कैसे होगा। आकाश का पुष्प, ख पुष्प बोला है शास्त्र ने, होता ही नहीं, और होता नहीं तो दिखाई भी नहीं देता। इसलिए असत बोलते हैं, ख पुष्प, वंध्या का पुत्र, आदमी की सींग, ये बाजार में उपलब्ध नहीं होते, कहीं दुनिया में आपको नहीं मिलते, क्योंकि वो होते ही नहीं है। इसलिए ऐसे पदार्थों के लिए शास्त्र ने कहा कि ये असत पदार्थ, जो होते भी नहीं और जो कभी दिखते भी नहीं। तो इस दुनिया को आप असत कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये दिखाई देता है, हमें प्रभावित भी करता है। इसलिए न हम इसको सत बोल सकते हैं और न हम इसको असत बोल सकते हैं। तो हम इस संसार के लिए क्या बोलेंगे? तो बोले अनिर्वचनीय, न सत और न असत, सद असत विलक्षण अनिर्वचनीय। इस संसार के लिए शब्द दिया शास्त्र ने, सत असत विलक्षण अनिर्वचनीय, इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते हैं। और बात भी सत्य है, आप कुछ भी बोलो तो वहां से बदलना शुरू हो जाता है। कई बार आप देखते हो, अरे इसको तो हम बहुत अच्छा समझते थे, लेकिन ये भी बोलते, अरे इसको तो हम बहुत बुरा समझते थे, लेकिन बातें बदल जाती हैं, बहुत सी चीजें परिवर्तित होती रहती हैं। इसलिए अनिर्वचनीय बोला, दुनिया को अनिर्वचनीय बोला है। और ब्रह्म तत्व को भी अनिर्वचनीय बोला है। आत्मा के बारे में भी आप नहीं बोल सकते, ब्रह्म तत्व के बारे में भी आप नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि आप निर्वचन करेंगे तो शब्द का आश्रय लेकर, लेकिन अशब्दम, न उसको सत कह सकते हैं ब्रह्म को भी, सत शब्द के द्वारा, सत शब्द वाच्य भी वो नहीं है और असत शब्द वाच्य भी वो नहीं है, वो तो बात छोड़ो। अवांग मनसा गोचर, ब्रह्म तत्व अवांग मनसा गोचर, वाणी का भी विषय नहीं और मन का भी विषय नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। मैं आपको पूछता हूं, मीठा क्या है? क्या है मीठा? आप इस मीठी की परिभाषा नहीं दे सकते। मीठा किसको बोलते हैं? आप ज्यादा से ज्यादा एक लड्डू लाके हमारे सामने रख दोगे आप बोलेंगे लो ये मीठा है। मैं बोलूं बोलो तो उस मीठे के बारे में कुछ बोलो, तो आप लड्डू के बारे में बोलोगे। मैंने बोला आप एक किलो मीठा हमको लाके दो, तो आपने क्या लाके दिया? लड्डू। मैंने बोला लड्डू नहीं चाहिए हमको, एक किलो मीठा चाहिए, तो आपने जलेबी लाके दी, आपने रसगुल्ले लाके दिए, आपने और कोई चीज लाके दी, लेकिन और कुछ इन चीजों के बिना आप केवल मीठा लाकर के दे सकते हैं क्या? आपने चीनी लाके दी, आपने ये मिश्री लाके दी, आप केवल मीठा, जो मीठा है ना मीठा, आप उसको ला सकते हैं क्या? नहीं, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। वो चीज जो है ना शब्दातीत है, आप नहीं कर सकते। बहुत सी चीज ऐसी हैं, बहुत सी क्या, अभी तो मैंने बोला ये सारा संसार ही अनिर्वचनीय है। तो फिर उस अतिंद्रिय ब्रह्म तत्व के बारे में कौन सा शब्द है? ये सारे शब्द जो है ना ये नक्शे की तरह है, नक्शे की तरह। अपने घर में हम लोग भोजन करने के लिए गए थे, उस दिन मैं इशारा कर रहा था, मैं ये सारे शास्त्र जो है ना ये इशारा करते हैं, इशारा करते हैं, ये सारे शास्त्र एक नक्शे की तरह मैप, आपको पहुंचना है वहां, आपके सामने मैप है, आपको मालूम पड़ रहा है, ओ ये रास्ता, ये पेड़, ये पौधा, आपको केवल इशारा करते हैं। इसलिए अनिर्वचनीय बोला वो तत्व, अनिर्वचनीय। अब एक साधकों के लिए इन दोनों में अंतर, संसार भी अनिर्वचनीय है और ब्रह्म तत्व भी अनिर्वचनीय है, दोनों अनिर्वचनीयता में अंतर क्या है? इसको अनादि अनिर्वचनीय ब्रह्म तत्व, सादि अनिर्वचनीय ये जगत, ये भी अनिर्वचनीय है लेकिन अनादि अनंत, और वो अनादि शांत। ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा गलत भी बोल गया हूं इसलिए दोबारा रिपीट कर रहा हूं। अनादि अनंत अनिर्वचनीयता ब्रह्म तत्व की, ब्रह्म भी अनादि है लेकिन अनंत है, उसका अंत संभव नहीं, और ये जो जगत है ना ये भी अनादि है लेकिन ये अनंत नहीं है। ये कब पैदा हुआ इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ये बाधित हो जाता है, इसका अंत हो जाता है। तत्र कह मोह कह शोक एकत्व मनुपश्य, ज्ञान के द्वारा इसकी समूल निवृत्ति हो जाती है, बाधित हो जाता है। इसलिए इसकी अनिर्वचनीयता अनादि शांत अनिर्वचनीयता। और इस श्लोक में, इस मंत्र में, 21वें मंत्र में आचार्य यम अब ये दोनों चीजें बता रहे हैं कि वो अनिर्वचनीय कैसे हैं, वो विरुद्ध धर्माश्रयता उसमें कैसे हैं। आसीनो दूरम रजति शयानो याति सर्वतः कष्टम मदा मदम देवम मदन्यो ज्ञातुम अर्हति। आसीनो दूरम रजति, वो ब्रह्म तत्व वो आत्म तत्व आसीन, वो आसीन है बोलते हैं ना, पीठासीन ऐसा बोलते कि नहीं, पीठासीन ऐसा आप बोलते कि नहीं कि महाराज हमारे पीठासीन हो गए, पीठ के ऊपर आसीन हो गए माने बैठ गए, अब चल नहीं रहे हैं। ये आसीन शब्द स्थिरता का वाचक, इसलिए भगवान शंकराचार्य जी ने कहा आसीन अवस्थित अचल एवा, वो आसीन माने अवस्थित हो गया है, अब अचल हो गया। तो ब्रह्म तत्व अचल है, अचल आसीन वो कूटस्थ है, कूटस्थ उसको हिला सकते आप नहीं, वो गमन क्रिया का कर्ता अब नहीं रहा। जैसे आप बोलते हैं ना स्थिर स्था गति निरतो धातु से तिष्ठ, तिष्ठ आप संस्कृत में किसी को बोलना है खड़े रहो खड़े रहो तो आप क्या बोलते हैं तिष्ठ तिष्ठ माने खड़े रहो खड़े रहो, रुको रुको तिष्ठ, राग शब्द का प्रयोग करते तिष्ठति ओहो खड़े रह गया मतलब। तो ये गति निवृत्त धातु है माने अब वो गति का आधार गमन क्रिया का आधार नहीं रहा, वो अब उसके अंदर गमन क्रिया नहीं, जैसे आप बैठे हैं तो आपके अंदर गमन क्रिया नहीं है, अब गमन क्रिया का आधार बना, आप चुपचाप बैठे हैं शांति से, और सचमुच कितना शांति से बैठे हैं आपने कभी अनुभव किया है कि आप प्रवचन में कितना शांत बैठते हैं, आप प्रवचन में कितना शांत है देखो, आप इतनी शांत हैं, इसका मतलब है यदि आप इतने शांत ना होते तो ये शांति आपके अंदर दिखाई नहीं देती। एक घंटा आप अपनी क्रियाओं पर कैसा नियंत्रण करते हैं, नियंत्रण करना पड़ता है कि नियंत्रण हो जाता है,
हो जाता है।
आप जब यहां आके बैठ जाते हैं तो आपको नियंत्रित अपने को करना पड़ता है कि अपने आप हो जाता है। अरे आप लोगों को देखे कोई तो बोलेगा कि अरे ये तो साधु बाबा, हाँ ये तो गर्दन भी नहीं ला रहे हैं, ये तो स्टैच्यू की तरह बैठे हैं, स्टैच्यू की तरह। इतनी स्थिरता इतनी अक्रियता, एक घंटा तक वो आपके अंदर है, वो चीज केवल सत्संग में आने के बाद प्रकट हो जाती है, अक्रियता प्रकट हो जाती है। और इस प्रकार आप अपने घर में भी हो सकते हैं, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि आप घर में ऐसा होना ही नहीं चाहते, आप वहां होना ही नहीं चाहते और वहां बहुत हवा चलती है घर में बहुत हवा चलती है, तूफान चलते हवा नहीं है ना, वहां पर तूफान चलते हैं तूफान, और वो तूफान आपको हिला देते हैं, लेकिन आपके अंदर वो चीज है, वो शांति वो अक्रियता, इसी को बोलते आसीन। और उसके बाद दूरम व्रजति, अब ये दूसरी विरुद्धाश्रयता दिखा रहे हैं, वो आत्म तत्व एक जगह पर स्थिर भी है और वो बहुत दूर तक भी चलता रहता है, वो चला जाता है। दूरम व्रजति वो गमन क्रिया का भी करता, एक ही समय में ध्यान देना, वो गमन क्रिया का करता भी है और वो स्थिरता माने गमन क्रिया के अभाव का भी अधिष्ठान होता है। ये आपके अंदर है, आप ध्यान दें, चल भी आप रहे और बैठ भी आप ही रहे, लेकिन ये एक ही समय में है, वही चल रहा है और वही बैठा है, और वो बिना चले भी चल रहा है, बिना बैठे भी बैठ रहा है। कबीर जी ने इसी बात को बहुत सुंदर कहा, बिनु पग चले सुने बिनु काना। अरे बहुत मजेदार बात बोली, ये जो आत्म तत्व है परमात्म तत्व है, बिनु पग चले, हमको चलने के लिए पैर चाहिए, हम तो बड़े कमजोर आदमी हैं, हम लोग बहुत कमजोर आदमी हैं, क्योंकि हमको चलने के लिए क्या चाहिए, पैर चाहिए, हम बहुत कमजोर आदमी हैं, सुनने के लिए क्या चाहिए? कान चाहिए। हम लोग बहुत कमजोर आदमी हैं, देखने के लिए आंख चाहिए, बोलने के लिए वाणी चाहिए, सूंघने के लिए नाक चाहिए। लेकिन जो तत्व है, आत्म तत्व, ईश्वर तत्व, उसको चलने के लिए पैर की जरूरत नहीं है, और उनको भी चलने के लिए पैर की जरूरत पड़े तो हमारे और उनमें क्या अंतर है? फिर हमारे में और उनमें क्या अंतर है? इसलिए बोले कि नहीं, बिनु पग चले, वो चलता है बिना पैर भी। अब वो कैसे चलता होगा देख लीजिए आप, सुने बिनु खाना। छू दिया और शब्द निकल गया, आश्चर्य तत्वशी महावाक्य। प्रहलाद को छू दिया, नाखून का स्पर्श हुआ, नख स्पर्श, और वहां तत्वमसी महावाक्य निकला। आपको बोलने के लिए वाणी की आवश्यकता है, तत्वमसी इतना भी वाक्य बोलना हो तो आपको जीवा की जरूरत है, और भगवान ने यूं छू दिया और छूते ही वह तत्वमसी महावाक्य प्रकट हुआ, और उसके अंदर का, प्रहलाद के अंदर का अज्ञान सहकृत जो शोकादि प्रपंच था वो सारा मिट गया। इसलिए एक ही समय में वो क्रिया का भी आधार है और वो अक्रिया का भी आधार है। अक्रिया उसकी वस्तु स्थिति है और क्रिया उसमें भासमान है। अब आप ध्यान देना, उस तत्व में अक्रियता उसका स्वभाव है, नैष्कर्म उसका स्वभाव है, और क्रिया उसमें भासमान है। उस तत्व का अक्रियत्व, क्योंकि आपने अभी तक उनके बारे में सुना, तत्व के बारे में सुना कि वो क्रिया रहित हैं, व्यापकत्वात् व्यापक है, उसमें क्रिया नहीं, इसलिए अक्रियता उस ब्रह्म तत्व का स्वभाव है, स्वरूप है। जैसे आप सुनते हैं ना, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ऐसा तो अक्रिया उसका स्वभाव है, और उसमें क्रिया जो है ना भासमान है। अब मैं आपको एक दृष्टांत में सुना देता हूं, बहुत जल्दी समझ में आएगी बात। आप सो रहे हैं और सोते समय आपने स्वप्न देखा, आप ओलंपिक दौड़ रहे हैं और आप जीत भी गए। कितना तेज दौड़े आप, बहुत तेज दौड़े, और ओलंपिक में आपने पदक जीत लिया, और वो भी स्वर्ण पदक जीत लिया। तो आप जब जग गए, तो जगने के बाद आपके अंदर क्रिया है कि नहीं? अरे आप हांफ रहे थे, आप स्वप्न में हांफ रहे थे भैया, कितनी खुशी थी, आहा, और हांफते हांफते आंख खुल गई। तो जब आप जग जाते हैं तो उसमें थोड़ा तो हांफना होगा, बहुत थोड़ा तो वो जो क्रिया आपके अंदर दिखाई दे रही थी, इसको बोलते हैं भासमान। वो क्रिया क्या है? भासमान है। आप बोलते भैया वो नहीं, वो तो स्वप्न था, वो क्रिया जो है ना भासमान, और आपका जो मूल रूप है वो अक्रिय था। आप अक्रिय हैं, लेकिन उसके अंदर स्वप्न की भासमानता थी, केवल आप मालूम पड़ रहे थे कि थे, चलते हुए मालूम पड़ रहे थे, लेकिन चलते हुए नहीं। और इस समय आपके अंदर जो क्रिया हो रही, वो आप तत्व दृष्टि से देखना, ये क्रिया के आधार आप है कि नहीं। राजा रहुगन और भरत, जड़ भरत पालकी में लगाए गए और ऊपर बैठे हैं कौन? राजा रहुगन, और ज्ञानी पुरुष को लगा दिया है, पालकी में ढुलवा दिया है, और वो बार बार बोलने लगे, ढंग से चलो भाई, ढंग से चलो, ढंग से चलो, ये क्या टेढ़ा मेढ़ा चल रहे हो, और तुम ढंग से नहीं चलोगे तो तुम्हारे हम दवा करेंगे, दवा करेंगे मतलब दंड देंगे। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली, उन्होंने कहा कि ये जो पैर है ना, ये चलने वाले के लिए हैं, और मैं तो बिना चलने वाला आदमी, ये रास्ता है, ये पैरों के लिए है, और मेरे पास तो पैर ही नहीं है तो कौन चलेगा फिर। उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बोली हो, अक्रिय आत्म तत्व की बात बोली, मैं तो अक्रिय हूं, मैं शरीर नहीं हूं, ये भार जो है ना ढोने वाले के लिए है, पैर चलने वाले के लिए है, रास्ता चलने वाले के लिए है। और बोले मैं तो शरीर नहीं हूं, तो ढोने वाला कहां से पैदा होगा? हां, चलने की क्रिया का कर्ता मैं नहीं हूं, चलने वाला मैं नहीं हूं, अपने अक्रियत्व की बात बोली वहां राजा रघुगन, मैं अक्रिय हूं। और वहां चलना तो प्रतीत हो रहा है। अब मैं थोड़ा आगे ले जाता हूं आपको, जड़ भरत में क्रिया मालूम पड़ रही है, जड़ भरत चल रहे हैं कि चलते हुए मालूम पड़ रहे हैं? जड़ भरत चलते हुए मालूम पड़ रहे हैं, लेकिन उसके अंदर चलन क्रिया नहीं है, चलन क्रिया भासमान है। आप ज्ञानी के अंदर क्रिया आपको जो दिखाई देती है वो आपकी दृष्टि में दिखाई देती है कि ज्ञानी की दृष्टि से दिखाई देती है? हमारी दृष्टि से। इसलिए भगवान ने सावधान किया गीता जी के पांचवें अध्याय में, पश्यं श्रृण्वन् स्पृशं जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपय श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् नुन्मिषन् निमिषन्नपि इंद्रियाणिन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। ज्ञानी पुरुष देखता हुआ भी नहीं देखता है, वो खाता हुआ भी नहीं खाता है, वो सूंघता हुआ भी नहीं सूंघता, वो स्पर्श करता हुआ भी स्पर्श नहीं करता है। और भगवान ने कहा वो आंखें पलके जो गिरती हुई मालूम पड़ रही है ना, वो भी ज्ञानी में नहीं होते, ये भासमान है। जैसे कि रज्जु में सर्प, शुक्ति में रजत, जैसे स्वप्न पदार्थ होते नहीं लेकिन वो भासते हैं। इसलिए ज्ञानी अपने आप को अकर्ता समझता है, अभोक्ता समझता है। ज्ञानी कर्ता होता हुआ भी अकर्ता होता है, और अज्ञानी जो है ना कर्ता होता हुआ भी कर्ता और अकर्ता होता हुआ भी कर्ता, और ज्ञानी कर्ता होता हुआ भी अकर्ता होता है, क्योंकि वहां पर भासमान उसके लिए तो स्वप्न है, एक अधिष्ठान तत्व, उसी तत्व में क्रिया भी और उसी तत्व में क्रिया का अभाव, और इसी को मिथ्यात्व बोलते हैं। अद्वैत सिद्धि ब्रह्म सूत्र आदि ग्रंथों में है ना, तद अभाववती तत्प्रकार को अनुभव अयथार्थ ऐसा बोला है। उसी वस्तु में जहां पर प्रतीयमान वस्तु है उसी में उसका अभाव हो तो समझना कि वो मिथ्या है, वो अनिर्वचनीय है, वो भासमान है, वो प्रातिभाषिक है। इस चीज को आप थोड़ा सा समझ लेंगे। जैसे स्वप्न पदार्थ है, स्वप्न का दृष्टांत वेदांत को और वेदांत की प्रक्रियाओं को समझने के लिए बहुत उत्तम है। जहां वस्तु प्रतीति प्रतिमान हो, जहां वस्तु की प्रतीति हो वहां पर वस्तु ना हो, उसको बोलते मिथ्या, उसको बोलते भासमान। जैसे कि रज्जु में सर्प दिखाई दे रहा है लेकिन वहां पर नहीं है, शुक्ति आपको चमक रही थी चांदी की तरह, जहां पर रजत की चांदी की प्रतीति हो रही थी वहीं पर उसका अभाव था। माने जो अपने अभाव के अधिकरण में दिखाई दे, अपने अभाव के अधिकरण में वस्तु दिखाई दे उसी को बोलते हैं भासमान। दिखाई दे केवल लेकिन वो वस्तु वहां पर हो नहीं, बस 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 यहां पर यही बात है कि उसी तत्व में क्रिया दिखाई दे रही है, उसी तत्व में क्रिया का अभाव दिखाई दे रहा है। और अपने को समझना है कि मेरे में क्रिया केवल दिखाई दे रही है, ये वास्तविक क्रिया मेरे में भी नहीं है। आप शरीर के अंदर है कि आपके अंदर शरीर है? एक बार मैंने पूज्य महामंडलेश्वर श्री स्वामी दिव्यानंद गिरिजी महाराज, जो वो स्वर्गाश्रम में रहा करते थे, हम उनके विद्यार्थी रहे। प्रस्थान्तरी का अध्ययन, नव्य न्याय का, व्याकरण का अध्ययन उनके पास किया हमने। जो साधना काल उसके बाद जब हम साधना करने लगे, तो महाराज श्री को मैंने पूछा कि आप अपनी कोई अनुभूति बताइए। वो थी ना बात, यद पश्यसि तद्वद, कोई शास्त्र की बात नहीं, आप अपनी कोई अनुभूति, तो बहुत अच्छी बात बताए। बोले कि मैं वेदांत का चिंतन करता था, उस समय ऐसा अनुभव होता था कि जैसे मैं बहुत बड़ा हूं। मैं जैसे उदाहरण बताया, जैसे कोई आपका स्टोर रूम है, तो स्टोर रूम में बहुत सारी चीजें पड़ी होती, बहुत सारी चीजें, कुछ कहीं यहां पड़ा है, कुछ वहां वहां वहां, बहुत बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं। बोले वैसे मेरे को ऐसा अनुभव होता था कि मैं इतना बड़ा हूं, इतना बड़ा हूं, और वो दुनिया के सारे शरीर मेरे अंदर है। हम लोगों को क्या अनुभव होता है, शरीर के अंदर हूं, ऐसा अनुभव होता है कि हमारे मेरे अंदर शरीर, ऐसा अनुभव होता है। भाई आप ब्रह्म तत्व है ना, आप क्या है, आत्म तत्व है, तो आत्म तत्व है तो आपको अनुभव कैसा होना चाहिए, मैं शरीर के अंदर हूं ऐसा अनुभव होना चाहिए कि मेरे अंदर शरीर है ऐसा अनुभव होना चाहिए, फिर होना क्या चाहिए। हमें तो यही होना चाहिए कि मेरे अंदर ये शरीर है, मैं तो व्यापक हूं ना, मेरे अंदर ये शरीर भी है, और ये हजारों ये जो शरीर दिखाई दे रहे हैं वो किसके अंदर है। ईमानदारी तो यही है कि भाई सारी दुनिया आपके अंदर, और ये चंद्र सूर्य नक्षत्र तारा अंगन सातों समुद्र ये किसके अंदर है, ये अच्छे लोग किसके अंदर है और बुरे लोग। अरे वो भी मेरे अंदर है, अच्छे लोग भी मेरे अंदर और बुरे लोग भी मेरे अंदर है, क्योंकि मैं तो आत्मा हूं व्यापक। तो उस समय ऐसा अनुभव होता था उन्हें कि सारी दुनिया के शरीर मेरे अंदर, और ये मेरा शरीर भी उसी के अंदर। अच्छा बता, आपका शरीर कौन सा है, जब दुनिया के सारे शरीर आपके अंदर हैं तो फिर आपका शरीर कौन सा है। बहुत मुश्किल है, आप अंगुली निर्देश नहीं कर सकते हो कि ये मेरा शरीर है। कि ज्ञानी को जब सर्वात्म भाव हो जाता है, आत्मज्ञान हो जाता है, तो ज्ञानी को ऐसा नहीं लगता कि ये शरीर मेरा, भैया यही क्यों आपका शरीर, क्योंकि आप तो व्यापक हो, व्यापकता की अनुभूति, सब कुछ आप हैं, फिर आपका शरीर कौन सा। बहुत मुश्किल है, इसलिए ज्ञान बहुत ऊंची चीज है, ज्ञान से परे कोई चीज नहीं है। आप बोलते हैं ना कि वेदांत सर्वोच्च शास्त्र है, आप सर्वोच्च अनुभूति में आप प्रवेश करते हैं तो वो बहुत गजब की अनुभूति है। आप अनुभव करते हैं सब कुछ मैं हूं, सब कुछ मैं, मेरे अंदर सब कुछ मेरे अंदर है, मेरे अंदर मैं इतना व्यापक, कौन सी चीज आपकी, फिर कौन सा शरीर आपका, सारे शरीर आपके। रामकृष्ण परमहंस को विवेकानंद जी महाराज जी ने कहा कि भगवान आप तो मां के उपासक है, मां आपकी बात मान जाएगी, आप मां से प्रार्थना करो कि आपका कैंसर ठीक हो जाए, आप अच्छी तरह से खा भी नहीं पा रहे। रामकृष्ण परमहंस ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, उन्होंने कहा बेटा ये दुनिया के सारे शरीर तो मेरे ही हैं, तुम क्या समझते हो, क्या मैं इसी मुख से खाऊं, तुम तो सोचते हो कि मैं इसी मुख से खाऊं, अनंत जो मुख है वो मेरे मुख है, अनंत मुखों से मैं खा रहा हूं। ये ज्ञानी का अनुभव है, ज्ञानी का अनुभव, वो अनंत आंखों से देख लेता है, अनंत कानों से सुन लेता है, वहां भेद नहीं रहता, उसके सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपाद, आप जो श्रुति गाते हो ना वही तो है और क्या है। इसलिए चलने वाला भी वही और नहीं चलने वाला भी। अच्छा जब हजारों पैर आपके हैं तो सारे पैर चल रहे हैं क्या, सारे पैर नहीं चल रहे हैं क्या, ये कई समय में आप चल भी रहे हैं और उसी समय आसीन है, आप किसी न किसी रूप में बैठे भी हैं और किसी न किसी रूप में एक ही समय में आप ध्यान देना, आसीन है वो बैठे भी हैं और दूरम रजति जा भी रहे हैं, आप किसी रूप में जा भी रहे हैं और किसी रूप में बैठे, आप खा भी रहे हैं और आप नहीं भी खा रहे। शयानो याति सर्वतः, आप सो भी रहे हैं और सोते हुए सर्वत्र पहुंच भी रहे हैं। शयानो याति सर्वतः, बोले कष्टम मदा मदम देवम, आप उसमें सुख और दुख ये दोनों से परे हैं। आप वो ऐसा पुरुष जिसकी अनुभूति है उस तत्व की, वो तत्व ऐसा है, उस तत्व की अनुभूति ऐसी है, आप उसमें सुखी होगा कि दुखी होगा। वो नारायण वहां न सुख है और न वहां दुख, वहां सुख भी है और वहां दुख, वो दोनों से परे भी हैं और वो दोनों भी हैं। जब कपिल भगवान मां को उपदेश कर रहे थे तो कपिल भगवान ने मां को यही बोला, मां सुख और दुख की अत्यंतिक निवृत्ति ही मोक्ष है। अब हम लोगों को जब प्रक्रिया में बोला जाए ना, प्रक्रिया में वेदांत की प्रक्रिया माने ए बी सी डी ऐसा है ना, वेदांत की जो प्रक्रिया आपको सिखाया जाता है ना, तो वहां आपको बताया जाता है ए बी सी डी ऐसा होता है कि नहीं। जब आप पहली बार जब स्कूल जाते हैं तो आपको बताया जाता है एक दो तीन चार ए बी सी डी सिखाई जाती है। तो आपको वेदांत की ए बी सी डी जब सिखाई जाती है तो यही सिखाया जाता है। मोक्ष क्या है भाई? बोले परमानंद की प्राप्ति, संसार दुख की निवृत्ति। ओहो, हम तो बड़े खुश हो गए जब हमने पहली बार जब वेदांत में पढ़ा संसार दुख की निवृत्ति और परम आनंद की प्राप्ति। तो परम आनंद कैसा होगा फिर? तो हम लोग कल्पना करते थे कि परम आनंद कोई ऐसा ज्ञान होने के बाद समुद्र होगा, उसमें हम डुबकियां लगा देंगे, बहुत भयंकर गर्मी हो और बहुत ठंडा ठंडा जल और उसके आहा हा डुबकियां लगाएंगे, आनंद आ गया। ये तो आपको ए बी सी सच्चिदानंद, सच्चित आनंद आपने को लगता हो सच्चिदानंद, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि वो सत इसलिए कहा क्योंकि असत नहीं है, उसको सत इसीलिए बोला क्योंकि ये कहना था शास्त्र को कि वो असत नहीं है, उसको चित इसीलिए कहा क्योंकि वो जड़ नहीं है, और आनंद इसीलिए कहा क्योंकि वो दुख नहीं है। दुख का व्यवर्तन करने के लिए उसको आनंद बोला, जड़ता का व्यवर्तन करने के लिए उसको चित बोला, असत का व्यवर्तन करने के लिए उसको सत बोला। लेकिन प्रारंभ में आपको साधना में प्रवृत्त करने के लिए बोला गया कि वो सत हैं, वो चित हैं, वो आनंद है। और मोक्ष क्या है? परमानंद की प्राप्ति और संसार दुख की निवृत्ति। ओहो, अब दौड़ो चॉकलेट के लिए कि बहुत अच्छी चॉकलेट मिलने वाली है आपको, तो आदमी दौड़ लगाता है ना। तो ऐसे ही है, कपिल भगवान ने मां को बोला, मां जिसको आप मोक्ष मोक्ष बोल रही हो ना, वो क्या है? अरे बोले वो सुख भी नहीं है और वो दुख भी नहीं है, सुख दुख से परे होने का ही नाम मोक्ष है। मदा मदम देव है ना, कष्टम मदा मदम देव, ना वो मद है और वो ना अमद है, ना वो सुख है और ना वो दुख है। आप जिसको सुख दुख बोलते हैं उसको क्या है? ऐन्द्रिक संवेदना। आप जिसको सुख बोलते हैं ना, वो है क्या? वो आप, अरे वो बहुत छोटी चीज है जिसको आप सुख बोलते हैं ना, वो बहुत छोटी चीज है। क्या छोटी चीज है? आपको रसगुल्ला मिला, दिवाली आ गई। ओहो, हाँ, पुराने जमाने में दिवाली को बहुत सारा बनाते थे लोग खाने पीने की चीजें, तो अब आज बनाता नहीं, आज क्यों नहीं बनाता है? क्योंकि साल भर दिवाली है, मैंने फोन किया किसी माई को, मैंने कहा दिवाली कैसे मन रही है? हाँ बोले बाबा ठीक मन रही। मैंने कहा आपने कुछ खाने पीने का बनाया कि नहीं? बोले कुछ नहीं बनाया। मैंने कहा क्यों नहीं बनाया? शक्कर पाड़े होते ना मीठे नमकीन। अरे बोले नहीं। मैंने कहा क्यों? अरे बोले साल भर पड़े रहते हैं, आप कहां से बनाए? पहले दिवाली का आनंद ज्यादा था क्योंकि आदमी जीवन पूरा साल भर वैसा नहीं जीता था, दिवाली को कुछ अलग। हाँ हाँ क्या भोजन बनाते थे लोग, माताएं महीनों लगी रहती, दिवाली है दिवाली है दिवाली है। ये सुख क्या है? आपने रसगुल्ला खाया और आपकी जीभ थोड़ी झंकृत हो गई है कि नहीं? ऐन्द्रिक संवेदना है ये, ऐन्द्रिक संवेदना। आंख के लिए बहुत अच्छा लगा, हा थोड़ा सा अच्छा लग गया, कान के लिए थोड़ा अच्छा लगा। तो ये ऐन्द्रिक संवेदना मात्र है, सुख जिसको बोलते हैं वो ऐन्द्रिक संवेदना, स्पर्श जन्य, शब्द जन्य, रस जन्य, गंध जन्य जो संवेदना, उसी का नाम है सुख। और क्षणिक है, ये स्थायी नहीं है। आपको रसगुल्ले बहुत अच्छे लगते हैं तो आपको रसगुल्ले के पहाड़ में जाके बैठा दे, आप कितना दिन खाओगे? अरे बोले बस 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 यहां से उठाओ हमको और हमको नमकीन के पहाड़ में जाके रख दो। आप बोलोगे नमकीन के पहाड़ में जाके रख दो भैया, बहुत कृपा होगी तुम्हारी, बहुत कृपा होगी, नहीं तो मर जाएंगे। गया वो सुख गया। और नमक के पहाड़ में जाके रखेंगे तो आप थोड़े दिनों के बाद बोलेंगे उठाओ हमको यहां से और कहां रख दो, और वो मीठे के पहाड़ में रख दो, नहीं तो मर जाएंगे। ये क्या है? ये सुख है, इसको सुख बोलते हैं। और ये सुख ग्रहण करने की जो क्षमता है वो बहुत कम है। आप कितना लंबा आप सुख की झंकृति, आप उस सुख को पाना चाहते हैं तो वो सुख संसार वाला आप उस कितना लंबा पाना चाहोगे? आप भोजन करोगे तो कितना घंटा करोगे, कितना घंटा करोगे? अरे एक घंटा ज्यादा से ज्यादा, दो घंटा, बहुत ज्यादा हुआ तो आप तीन घंटा बैठ के खाते रहो। भैया तीन घंटे तक खाने का आनंद आपने लिया और चौथे घंटे में फिर आप ऊब जाओ, अरे भैया हटाओ इसको यार, बस हो गया, हटाओ। ये सुख की सीमा है। आप जिस सुख के पीछे पागल हैं वो सुख नारायण, वो स्थायी नहीं है, आपको उससे भी परे हो जाना है। अच्छा ये संसार का जो सुख है ना, संसार का सुख, ये संसार का सुख है क्या? मैं आपको बता दूं, वस्तुतः इच्छा ही दुख है। और जब इच्छा पैदा हो जाती है तो आप टेंशन में आ जाते हैं। ये सबसे बड़ा जो टेंशन है ना, टेंशन बोल रहा हूं, टेंशन ये सबसे बड़ा जो टेंशन है ना, और कोई टेंशन है, इच्छा ही टेंशन है। आप अच्छे खासे बैठे थे, अच्छे खासे, और इसी समय फोन आ गया, और फोन आने के बाद उधर से बोला कि भैया तुम आए नहीं अभी, अरे वो बात अभी बाकी रह गई है, समय हो गया है, कब आ रहे हो? ओहो बेचैन हो गया आदमी, देखता है इधर उधर, परेशान हो गया, टेंशन में आ जाता है। अभी आप बहुत अच्छे बैठे हैं और इसी समय आपको रसगुल्ला खाने की इच्छा हो जाए, आप टेंशन में आ जाओगे। मैंने कोई भी इच्छा पैदा हो गई तो आप टेंशन में आ गए। टेंशन सबसे बड़ा टेंशन तो इच्छा का पैदा होना टेंशन। आपको भूख लगी चाहे वो किसी भी चीज की, आप टेंशन में आ गए। आप वो टेंशन दूर करने के लिए क्या करते हो फिर? अरे आप लड्डू खाओगे, रसगुल्ला खाओगे, और क्या? ये लड्डू खाना, ये रसगुल्ला क्या खाना है? ये टेंशन दूर करने की दवा है और कुछ नहीं है। इच्छा पैदा हो गई, अब खा लो लड्डू, और लड्डू खा लेते हैं तो सुख मिलता है कि टेंशन दूर होता है? और कुछ नहीं। ये इच्छा की निवृत्ति ही इसका प्रयोजन है। जो इच्छा का पागलपन, वासना का जो पागलपन पैदा हुआ है, आपको उसको दूर करना है, खा के पी के देख के छू के सूंघ के। और जैसे जैसे आप खाते पीते सूंघते हो तो वो इच्छा कम होती जाती है, इच्छा का पागलपन कम होता जाता है और उसको आप बोलते हैं कि मैं बहुत सुखी हुआ। इसलिए आचार्य यम ने कहा कि वो आत्मतत्व न मद है न अमद, न वह सुख है न वो दुख है, वो सुख और दुख से परे हैं और सुख और दुख से परे होने का ही नाम मोक्ष है। मोक्ष उस तत्व को मेरे बिना कौन जान सकता है, माने मैं जान सकता हूं, मैं जानता हूं और वो जानी हुई चीज मैं तुमको कहूंगा, कह रहा हूं। तो यद पश्यसि तद वद, उसका उत्तर यहां उन्होंने दिया। मदन्य, जो मेरे से अन्य कौन उसको जानेगा, माने मैं जानता हूं उसको, मैं जानता हूं और वो चीज मैं तुमको कहूंगा। आप सीधे बैठ जाएं।
ॐ ह्रीं नमः शिवाय, 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 ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।